Yeah. ਕਰਦੇ ਕਰਮਾਨ ਕਾਠੀ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆਇਆ ਸੀ। white flags over them, like the red Manchuria would not have.
Article fichier bêta type topic ka naam hai bêta given sabhi kumariyon ke liye. बहुत ज्यादा पॉइंट सुनकर पॉइंट्स की वर्षा तो नहीं हो रही है ना. तो बेदाग जीवन के आज ऐसे 10 दाग, उन 10 दागों की चर्चा करेंगे. जीवन कैसा हो हमारा बेदाग, जिसमें कोई दाग, कलंक, स्टेन, कलमश न हो. ये टॉपिक बहुत सुंदर है कि कैसे ऐसा जीवन बनाए. सभी के पास पेन और डायरी है, सबके पास है ना. तो जो 10 बातें सुनाएंगे आज के लिए नहीं, परंतु संपूर्ण जीवन के लिए याद रखना है. इससे पहले किस विषय पर चर्चा करें, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं. बचपन में कहानियां सबको बहुत पसंद आती है ना. ये कहानी जैन कहानी है, जैन धर्म से ली हुई कहानी, शायद ही किसी ने सुनी होगी अब तक, क्योंकि ये कहानी के रूप में नहीं है, कुछ और है. इस कहानी में 2 भाई हैं, सत्य घटना. राथ नेमी एक भाई का नाम है, अरिष्ठ नेमी दूसरे भाई का नाम है. अरिष्ठ नेमी जो है वो वैरागी स्वभाव का है, उसे संसार में रस नहीं है. जैन धर्म में वो आगे बढ़ना चाहता है, मुनि बनना चाहता है, ये उसके जीवन का लक्ष्य है. परंतु ठीक उसके विपरीत उसका भाई राथ नेमी संपूर्ण लौकिकता में डूबा हुआ है. देह की दुनिया, ये संसार, यहाँ के भोग, यहाँ के विलास, ये विलासिता का जीवन ही उसका जीवन. उस कहानी में दिखाया है एक राजकुमारी है, राजीमती जिसका नाम है. वो जो राजीमती है बहुत सुंदर दिखाई है, और उसे उन 2 भाइयों में से जो वैरागी स्वभाव वाला है अरिष्ठ नेमी, उससे प्यार है, और उससे वो विवाह करना चाहती, परंतु अरिष्टनी में जो है, जैसे कहा वीतराग, उसका स्वभाव वैरागी स्वभाव है। ग्रस्त जीवन में उसे कोई रस नहीं है। तो राजीमती उससे कहती है कि मुझे तुमसे विवाह करना है। अरिष्टनेमी कहता है ये संभव नहीं। ये संभव नहीं, क्योंकि मेरा जीवन जो है वो आत्म साक्षात्कार के लिए है। संसार और संसार के बंधनों में फंसना मेरे मन को स्वीकार नहीं। और उसे ठुकरा देता है, राजीमती चली जाती है। परंतु उसका भाई बहुत खुश हो जाता है। प्राप्त नेमी खुश इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे खुद उससे शादी करनी होती है, परंतु वो तो उसकी तरफ कभी देखती भी नहीं। तो राप्त नेमी अपनी सेविका को उसकी सेवा में बेचता है ताकि वो दासी उसकी महिमा करे राजीमती के आगे, उसके पराक्रम की, उसके शौर्य की, उसकी सौंदर्य सुंदरता की। तो वो दासी जाती है राजीमती के पास और बहुत महिमा करती है राप्त नेमी की। परंतु राजीमती समझ लेती है कि वही है ये दासी और कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा ही कुछ लगता है उनके प्रति, तुम्हारे स्वामी के प्रति। उनसे कहो कि फला फला रात को वो मुझे मिलने आ जाए। तो रात्रि में बहुत खुश हो जाता है, परंतु वो दासी से एक बात भी कहती है कि आते समय उसके पसंद का शरबत मेरे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए लेके आए। उदासी जाती है, संदेश देती है, रात में भी बहुत खुश, इसी का तो उसे इंतजार था। तो वो जाता है उस राजकुमारी से मिलने, वो शरबत लेकर दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और फिर रात में भी कहती है अभी कुछ पिलाओगी, तो वो शरबत निकालता है, एक उसके लिए एक इसके लिए। तो रात नेमी होती है अपने ग्लास में, उसके ग्लास में कुछ दवाइयां डाल देती है जो वो खुद पीने वाली है। और रात नेमी पीता है और ये राजीमती भी पीती है। और जैसे ही राजीमती पीती है, क्योंकि उसकी दवा शरबत में उसने खुद ही कुछ दवाई डाली थी, उसे उल्टी आ जाती है और वो उल्टी वापस उसी ग्लास में गिरती है और वो रात नेमी से कहती है राजकुमार से, अगर तुम्हारा मुझसे सच्चा प्यार है तो तुम इसको भी पी लो। वो कहता है क्या इसमें तुमने उल्टी की है? वो कहती है कि ये मेरे पेट में थोड़ी गया था, यहीं तक गया था, मैंने तो उसको यहीं से बाहर निकाल दिया ना, अंदर तो गया ही नहीं है पूरा, ये तो बस मैंने पिया और बाहर कर दिया, तो आप इसको पियो। वो कहता है क्या तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? वो कहती है पता है, इसलिए तो कह रही हूं क्योंकि तुम ही कहते हो ना तुम्हारा मुझसे प्यार है। वो कहता है प्यार का एक उल्टी में क्या संबंध है? तो वो कहती है संबंध है, अगर तुम्हारा मुझसे सच्चा प्यार है तो तुमको ये पीना पड़ेगा। वो कहता है क्यों, ये कौन सा हिसाब है? तो वो उसको एक ऐसी बात कहती है कि वो बात सुनकर वो रात में संन्यास ले लेता है, सब कुछ छोड़ छाड़कर। वो कौन सी बात हो सकती है बताओ? कौन सी बात होगी? चलाओ बुद्धि दौड़ाओ बुद्धि को, क्या हो सकता है, सोच सकते हैं कुछ? भूख कहती है मेरा प्यार तुम्हारे भाई से था, परंतु तुम्हारे भाई ने मुझे ठुकरा दिया है, तो मैं जैसे कि उल्टी हूं उसकी, तो किस अधिकार से तुम मेरे पास आए हो और मुझे स्वीकार करना चाहते हो? मैं तुम्हारी वो ही नहीं, मैं तो किसी और की हो चुकी हूं, और उसने मुझे ठुकरा है वो दूसरी बात है, पर जिस जो ठुकरा चुकी है उसको तुम ग्रहण करना चाहते हो, तो ये वैसा ही है जैसे कि ये उल्टी। और वो सब कुछ छोड़कर तुरंत जैसे मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है, मैं ये क्या कर रहा हूं, वो उसको कहती है कि किस सौंदर्य के तरफ तुम आकर्षित हो रहे हो, यह देख, क्योंकि वो खुद भी परम ज्ञानी होती है और उसका जो उसके भाई से प्यार होता है वो विकार का प्यार नहीं होता है, वो भी उसी भाई के साथ में वैसे ही साधना करना चाहती थी, इसके लिए उससे उसके मन में ये संकल्प था कि उसके साथ रहूं। जीवन एक बार जिसको दे दिया हम उसी के, फिर संसार के किसी पुरुष का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, और यहां तो हमको उसने उस परम प्रियवर ने स्वीकार कर लिया है, और जब स्वीकार ही कर लिया है तो फिर और किसी के हम कैसे हो सकते हैं? मन धन जन सब कुछ उसके लिए, तो इस देह पर इस मन पर इन भावनाओं पर इस चित्त पर इस हृदय पर इस भाव पर और किसका अधिकार कैसे रह सकता? क्या सभी कुमारियां ऐसा सोचती है? यह बहुत बड़ी और ऊंची बातें हैं, क्या कहेंगे? यहां की कुमारियां दीदी बहुत ही मौन है, एकदम शांत स्वरूप। अच्छा, यहां हमने अभी तक एक की भी आवाज भी नहीं सुनी जब से आए तब तक, तब से एकदम मान और एकदम शांत चित्त, जैसे कुछ करना भी बाकी नहीं रहा है, सारा पुरुषार्थ पूरा हो चुका है। ऐसे तो नहीं है? कुछ तो बोलो, यहां से चालू करते हैं फर्स्ट, ऐसा निश्चय है? हाँ ना, हाँ सेकंड, वो भी गर्दन से मुख का मौन है। ऐसा निश्चय है थर्ड पीछे, मौन की भाषा और इशारों की भाषा है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिकल है। तो इस सर्वश्रेष्ठ जीवन की ऐसी कुछ बातें हम आज आपसे कहेंगे। जैसे कहा कि यह जीवन बेदाग जीवन हो, बेदाग, कोई दाग उसमें नहीं, इतना सच, इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना निर्मल, इतना प्रांजल यह जीवन हो। ऐसी वो कौन सी बातें आ जाती हैं जो दाग का रूप दे देती है। वो दाग बहुत ही सूक्ष्म है। कौन से वो दाग? तो इन पर कुछ चिंतन करेंगे। केवल हम अकेले नहीं बोलेंगे, आज सब भी बोलेंगे साथ साथ। सबसे बड़ा दाग पहला, दस बातों की चर्चा करेंगे, उसमें से सबसे पहली बात, अपवित्र संकल्प, अपवित्र बोल, अपवित्र कर्म और अपवित्र कल्पनाएं, अपवित्र भावनाएं। सबसे पहला अपवित्र संकल्प, काम विकार के संकल्प, काम की भावनाएं, काम की कल्पना, इमेजिनेशन, फैंटसी, फैंसी, कामुक भावनाएं, उस तरह के बोल, उस तरह के कर्म। कर्म तो बहुत स्थूल चीज है, परंतु बाकी जो बताया वो बहुत सूक्ष्म। बोध भी थोड़ा स्थूल में आ जाता है, बोध और कर्म थोड़े स्थूल है, परंतु जो उसकी पहली बातें बताई, संकल्प, कल्पना, भाव, भावना, वृत्ति, ये सारी बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। यदि इस जीवन में हमारे मन में ये सभी बातों में से कोई एक बात भी है, तो ये एक इस जीवन में बहुत बड़ा क्या है, दाग है। बेदाग जीरा नहीं बन सके। अगर इनमें से कोई भी एक बात भी हमारे जीवन में है तो क्योंकि जैसे हमने कहा, आत्मा ने जन्म जन्म सबसे ज्यादा पाप किस विकार से किए, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ईर्ष्या से, द्वेष से, आत्मा के द्वारा सबसे ज्यादा पाप जो हो रहे हैं वो काम विकार के द्वारा हो रहे हैं। और आत्मा में वो इम्प्रिंट, वो इम्प्रेशन है, अवसर की देरी है, ट्रिगर की देरी है, स्टिमुलस थोड़ा सा मिल जाए तो बाहर आ जाएगा सब कुछ। इसके लिए इस जीवन में अपने संकल्पों को चेक करना है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, समय और संकल्प एक घंटे में कैसे चलते हैं चेक करो, जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। बाबा ने रिजल्ट बताई, जितना जमा होना चाहिए उतना जमा नहीं है। इतनी जो बातें बताई पहले दाग ने, उसमें एक बात जो बताई, कल्पना, इमेजिनेशन करना, किसी को कुछ करते हुए देखना, वैसे ही करने की इच्छा होना और उसकी कल्पनाएं करना, फैंटेसी, सेक्सुअल फैंटेसी जिसको कहते हैं, ये एक जबरदस्त दाग है। क्योंकि इसे रोका नहीं जाए तो वो कल्पनाओं का कोई अंत नहीं, एक कल्पना दूसरी कल्पना तीसरी कल्पना 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 को जन्म देता है, आगे आगे बढ़ती है कल्पना है। जो छोटी सी इच्छा थी अब वो बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद फिर वो इतनी पाप महसूस नहीं होती, क्योंकि बड़ी कल्पनाओं में रमन करने के बाद वो रूटीन जैसी हो जाती है, फिर और बड़ी और बड़ी और बड़ी। संसार में जो फिल्में हैं और उनकी जो एक्ट्रेसेस, क्या उनको लगता है वो कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं लगता है। उनको तो लगता है ये ठीक ही है सब, क्योंकि उनका मन उस तल तक पहुंच गया है। हाँ, हो सकता है पहली बार कुछ कर रहे हो तो गलत लगा था, परंतु बार 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 किया, कल्पना कल्पना का विस्तार हुआ, पहले मन में उत्पन्न होता है संकल्प और कल्पना, और फिर उसका विस्तार और फिर कर्म, फिर बाद में उनको ये नहीं लगता है कि कुछ गलत है, उनको लगता है ठीक है, ये स्टेटस के लिए ये सब करना चाहिए। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा है एक एक संकल्प का बाप को भोग लगाओ। सुना है महावाक्य बाबा का, क्या करो तुम्हारे संकल्प इतने श्रेष्ठ हो कि एक एक संकल्प का बाप को भोग लगाओ। जो वस्तु का भोग लगाया जा रहा है वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? यदि किसी पशु की बलि दी जाए और बाप को भोग लगाया जाए तो क्या वो स्वीकार करेगा? सबसे बड़ी हिंसा कौन सी? साकार मुरली सुनते हैं ना सभी? कौन सी है? काम कटारी। तलवार से बाबा ने उसकी तुलना की है, वो तलवार तो शरीर को खत्म करती है, ये तलवार आत्मा का घात करती है, आत्मा की हत्या होती है, वह आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है उसकी हत्या, वह आत्मा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम्, वह आत्मा जिसे आग जला नहीं सकती परंतु कामों से जलाता है, वह आत्मा जिसे शस्त्र छेद नहीं सकते परंतु काम की कटारी छेदती है, वह आत्मा जिसे हवा सुखा नहीं सकती परंतु काम की हवा उसे सुखा कर मुरझा देती है, अपवित्र संकल्प, अपवित्र बोल, अपवित्र भावनाएं, अपवित्र दृष्टि, अपवित्र वृत्ति, अपवित्र स्मृतियां, उससे भी अधिक शक्तिशाली है स्मृतियां, यादें, मेमोरीज, इस जन्म के और पूर्व जन्म के भी। वो कब यादें अगर आ जाए तो बाहर ले जाती है सब कुछ। अगर आत्मा ने जन्म में तो पाप नहीं किए परंतु पूर्व जन्म की यादें उसमें संचित है, इसके लिए उसको वही दग्ध करना है इससे पहले कि वो अंकुरित हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो। उसे अगर खाद मिल जाए, उसे अगर पानी मिल जाए, उसे अगर वैसा वातावरण मिल जाए तो झाड़ उग के आ जाएगा। इसलिए बाहर से चाहे कितनी भी हम सेवाएं करते रहे परंतु आंतरिक साधना ये है, क्योंकि ये अगर हट गया तो बाहर की सारी सेवाएं नीचे गिर जाएगी। अगर ये हट गया तो बाहर का जो कुछ भी है हमने रचा हुआ, चाहे सेंटर, चाहे स्टूडियोस, चाहे सेवा और सेवाओं का विस्तार, सब से गिर जाएगा। इसके लिए होनहार ब्रह्मा कुमारी तो पहला दाग कौन सा था? अपवित्र दाग। हाँ, उसमें भी सबसे गहरा जो है फिर वो कर्म है, दैहिक संबंध। परंतु वहां तक आत्मा तुरंत नहीं पहुंचती, उस तक पहुंचने के लिए ये सारी सीढ़ियां वो क्रॉस करती तब वहां पहुंचे। हाँ, अगर ध्यान नहीं है तो पहुंच जाए। संकल्प कब संकल्प, भावना और कब भावना, भाव और कब भाव, कल्पना और कब कल्पना का विस्तार, और कब दृष्टि वैसी और कब वृत्ति वैसी, और कब बोल वैसे और कब वो कर्म, वहां तक स्वतः पहुंच जाएगी आत्मा। ये था पहला। दूसरे की छोटी चर्चा हमने कल भी की थी। दूसरा है फैमिलियरिटी, इंग्लिश में कहते हैं इंटीमेट फ्रेंडशिप, घनिष्ठ मैत्री। आध्यात्मिक मैत्री होना बहुत अच्छी बात है, परंतु वो मैत्री आध्यात्मिक ही रहे, उस मैत्री में बीच में वो झील हमेशा है, वो उधर हम इधर। लगाओ कब जुटाओ, लगाओ आसक्ति, मोह में कब परिवर्तन हो जाए और आसक्ति कब बन जाए, अटैचमेंट कब बन जाए पता नहीं चलता। फिर वही व्यक्ति चाहिए, फिर उसी के साथ सेवा करनी है, फिर उसी के साथ बाहर जाना है, फिर उसी के साथ सब कुछ करना है। वही अच्छा लगता है, उसी के गुण अच्छे लगते हैं, उसी की विशेषता अच्छी लगती है, उसी को देखना अच्छा लगता है, उसी को सुनना अच्छा लगता है, उसी से बातें करनी अच्छा लगता है, उसी से हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। अगर उसकी कोई ग्लानि करे तो क्रोध, अगर उसके विरोध में कोई कुछ कहे तो आग उत्पन्न होती है, अगर उसको कोई डांटे तो इधर बुरा लगता है, अगर उसे कोई शिक्षा दे, शिक्षाएं दे तो यहां चुपता है। ये सारे आसक्ति के ही बहुरूप है। लागत, बाबा मुरली में शब्द प्रयोग करते हो, कोई भी लागत ना हो। तो ये भी क्या है, इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में एक दाग अगर है तो इसको मिटाओ, अगर नहीं मिटता तो मदद लो। अगर नहीं मिट रहा है तो जिसने मिटाया है उसके पास जाओ, वो मदद करेगा। परंतु यूं ही अकेले उसमें फंसे रहना और निकलना नहीं, और मदद भी नहीं लेना, ये बुद्धिमानी नहीं। तीसरा, झूठ। तीसरा है झूठ, झूठ बोलना, जो किया है वो तो छिपाना और झूठ बोलना। बाबा ने हमेशा कहा है, बाप को कौन से बच्चे प्रिय है, बच्चे ऐसे जो बच्चे वहीं पर साहेब राजी। मोही कपट छल छिद्र ना हो, जहाँ झूठ है वो उसे प्रिय नहीं। यदि हमारा जीवन झूठ से भरा है, बात बात में झूठ, छोटी छोटी बातों में झूठ, जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी झूठ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां हम अगर चुप रहे तो बहुत ही अच्छा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन कहानी में लिखा है, जब वो विदेश गए थे पहली बार, उन्हें बोलना नहीं आता था, मौन रहते थे, भाषा भी नहीं आती थी इंग्लिश, चुप रहते थे। एक बार का अनुभव लिखा है कि बोलने को कहा बोल नहीं पाए, परंतु उन्होंने ये भी लिखा है कि ये मौन ने ही मेरी रक्षा की। द डिजायर टू मॉडिफाई और सप्रेस द ट्रुथ इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मैन एंड साइलेंस इज मस्ट टू सप्रेस दिस। सत्य को मॉडिफाई करना, हम एकदम झूठ नहीं बोलते हैं, उसको थोड़ा रूप बदलते हैं, उसका मॉडिफाई कर देते हैं या दबा देते हैं। ये दो चीजें, झूठ बोलने की बात नहीं कही, सप्रेस और मॉडिफाई। ट्रुथ इज अ नेचुरल टेंडेंसी, ये एक स्वभाव है जैसे मनुष्य का, और इसके लिए साइलेंस इज मस्ट। तो झूठ कहां कहां हमने झूठ बोला, कब कब हमने झूठ बोला, क्यों हमने झूठ बोला, भविष्य में ऐसी कौन सी बातें होने वाली है जब हम झूठ बोल सकते हैं, इन सब का चिंतन करना है। क्या इस झूठ को रोका जा सकता है, क्या हम रोक सकते हैं इस झूठ को। फॉल्सहुड, यहां तो झूठ का व्यापार है, ये झूठ की दुनिया है। बाप आए हैं तुम्हें सच की दुनिया, सच खंड में ले जाने, ये झूठ खंड है। तो क्या इस झूठ खंड में हम भी झूठे हैं। यदि हमारे जीवन में भी झूठ 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 है जगह जगह पर, तो हमने और उनमें क्या भेद है। स्वयं को चेक करना, कहां कहां हम झूठ बोलते, और ये झूठ इतना सूक्ष्म है। कोई आ रहा है और हम कहेगी वो घर पे नहीं है, या हम किसी को बताएं उनको कह दो कि हम नहीं है, छोटी सी बात है, परंतु क्या ये सत्य है, किस श्रेणी में जा रहा है। हमें कहीं पहुंचना था, हम लेट पहुंचे और हम झूठ बोले कि हमें कोई काम आ गया था, जबकि कोई काम नहीं था, हम सोए थे। हमने किसी को टाइम दिया था इतने इतने बजे आकर फोर्स करना है, और वो अगर हमको पूछ ले कि क्यों लेट हुआ, या कोई VIP आ रहा था, या हम कहीं जाने वाले थे किससे मिलने, और हमने कहा था कि टाइम दिया है ये टाइम पे हम पहुंचेंगे, और हम लेट पहुंचे और झूठ बता रहे, तो ये भी तो एक दाग है या नहीं। दाग बहुत सूक्ष्म है सारे के सारे। तो ये तीसरा, चौथा, छिप छिप के मूवीज देखना या नॉवेल पढ़ना। इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में ये भी क्या है, जैसे दाग है एक, सारी कल्पनाओं का जन्म वहीं से होता है, नहीं तो पता कैसे है कोई चीज का, कोई चीजों का पता नहीं रहता है, जब देखते हैं तो पता चलता है ऐसे ऐसे है। तो चाहे कैसे भी है, दादियों ने 14 साल तक संसार से एकदम अलग रह के तपस्या की, उन्हें खबर ही नहीं थी संसार में क्या हो रहा है। वो समय था राजनीतिक हलचल का, इतनी सारी हलचल हो रही थी भारत में, भारत पाकिस्तान का विभाजन, क्रांतिकारियों का संघर्ष, इधर सत्याग्रह उधर सत्याग्रह, कितना भयंकर हलचल चालू थी बाहर संसार में उस समय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी भी हो चुका था, वो स्वतंत्रता संग्राम चालू था एक समय, वे कुछ एक तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें क्रांतिकारियों को जेल हो रही थी, क्या क्या कुछ हो रहा था उस सारे वातावरण में, वो सब थी दुनिया से इंसुलेटेड, डिटैच्ड, कोई पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं। उस समय भारतीय सिनेमा की शुरुआत भी हुई थी, कोई खबर ही नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई लेना देना नहीं। ऐसी तपस्या करने के बाद ही निकले वो सारे। तो मूवीज और नॉवेल्स या ऐसी किताबें जिसमें या जिससे इच्छाएं और कामनाएं और वासनाएं जागृत हो जाए, हमारे ओपीडी में एक बहन आई थी, इतनी मोटिफाइड थी, बहुत सारे बाहर के एक डॉक्टर ने लिखा था उसका डायग्नोसिस, सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर, कहीं ना कहीं वो दबा हुआ था, और जन्म कहां से लिया फिर इसे, इसी मीडिया ने जन्म दिया था कहीं ना कहीं बचपन में होगा या कभी। तो उसके बाद है पांचवा, धोखा देना, डिसेप्शन। पांचवा है धोखा देना किसी को। कैसे धोखा देते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर बोलो, कैसे, कोई उदाहरण, कोई भी। हाँ, किसी से कोई कमिटमेंट की और तोड़ दिया, किसी से कहा हम ये करेंगे और किए ही नहीं, कोई प्रॉमिस किया और तोड़ दिया, किसी का हम पर बहुत विश्वास है, उसके विश्वासघात किया उसके साथ, चाहे वो कोई भी बात हो सकती, कोई भी यज्ञ की छोटी बात से लेकर तो ऊपर की बड़ी से बड़ी बात, पैसों की बात से लेकर तो सूक्ष्म ज्ञान की बात तक। झूठ कहना और फिर धोखा देना इसी यज्ञ में या यज्ञ के बाहर। और बाहर वालों को अगर हम ऐसा करते हैं तो और भी ज्यादा, किसी भी तरह का धोखा, धोखाधड़ी हम यदि करते हैं इस जीवन में, क्योंकि हम आदर्श है, वैसे तो कोई करता नहीं है, परंतु कभी कभी फिर भी होने की संभावना है, इसके लिए पहले ही बता रहे हैं कि ये भी एक दाग होगा इस जीवन में यदि हम किसी को धोखा देते हैं। सोचो हमने किसी बाहर के व्यक्ति पर बहुत विश्वास, किसी ने बाहर का कोई सहयोगी मात्र है और हम पर बहुत विश्वास करता है, हम सेंटर पर रहते हैं, और एक दिन उसे कुछ और ही पता चल गया, वो आके कहेगा बहन जी मैंने आप पर कितना विश्वास किया था और आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो सोचा था ये ऐसा कार्य है, आपने तो कहा था इसमें ऐसी चीज होने वाली है, यहां ये हुआ, आपने तो कहा था थोड़े समय के लिए ये चीज चाहिए, चाहे वो हॉल है, आपने कहा था इसमें हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे पर आपने तो ये प्रोग्राम कर दिया, कहते समय तो आपने ये कहा ही नहीं था, कुछ भी हो सकता है। आपने तो कहा था ये फल हम आपको दे रहे हैं कि जिसमें हम योग करेंगे, पर आप ये तो कुछ और ही कर रहे हो। मैंने आप पर कितना भरोसा किया था। हाँ, इसके लिए हमारा जीवन पारदर्शी जीवन हो, ट्रांसपेरेंट। झूठ नहीं बोलना है और ना ही किसी को धोखा देना, क्योंकि बाद में पश्चाताप बहुत होगा। फिर छोटी सी बात है परंतु पश्चाताप होगा, और उसको चले ना हो, हमको खुद ही होगा। हम ही ज्यादा दुखी होंगे कि हमने ऐसा किया ही क्यों। चाहे वो कोई वस्तु खरीदनी है, चाहे वो फल ही क्यों ना खरीदनी हो, कोई भी चीज, वो धोखा इतना सूक्ष्म हो सकता है। हमें कोई चीज मिल रही है, हम उससे कहें कि नहीं ये चीज तो हमारे यहां बहुत सस्ते में मिलती है, परंतु वो मिलती नहीं है, फिर भी हमने कहा। एक झूठ और एक धोखा। चलो ऊपर से कुछ नहीं दिखा दे रहा है, परंतु अंदर से तो है, हम तो जानते हैं। वो बेचारा, हम भाव करते हैं, ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं बेचने वाले, उनके पास कितनी कितना पैसा है, कुछ भी नहीं है। उसमें से हम 2-3 रुपए के लिए और 10 रुपए के लिए, इधर लाखों तो ऐसे ही चले जाते हैं, कई बार वेस्ट हो जाते हैं। पेनी वाइज पाउंड फिनिश। और 10 रुपए और 5 रुपए के लिए हम उससे झगड़ा करते हैं, उस व्यक्ति से, और उसको समझाने के लिए बहुत सारी दूसरी बातें भी बताते हैं, वो भी एक धोखा ही है। तो उसके बाद निंदा, छठवां पॉइंट है, छठवां दाग, निंदा। किसकी निंदा? सेंटर की निंदा, सेंटर की बहनों की निंदा, दूसरे सेंटर की निंदा, दूसरे सेंटर की बहनों की निंदा, बड़ी बहनों की निंदा या डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट, मधुबन की निंदा, मधुबन के भाइयों की निंदा, या हल्के बोल उसके प्रति, या हमको पता है मधुबन में ऐसा होता है, ये सारे क्या है? दाग, अब्यूज, डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट, हल्के शब्दों में उनके प्रति कहना, ये बहन ऐसी ही है। हमको याद है, बतानी तो नहीं चाहिए, बात बहुत खराब बात है, पर बता रहे हैं। एक सेंटर पे हम गए थे, वहां की इंचार्ज जो बहन थे वो 3 बिल्लियां पालती थी, छोटी छोटी, और उसको बहुत प्रिय थी बिल्लियां। एक बार वो चली गई थी कहीं सेवा में, और उसी समय हम वहां थे 3 दिन के लिए। तो छोटी बहन जो थी मुरली सुना रही थी क्लास में, और मुरली सुनाते सुनाते मोह की बात आई, आसक्ति की बात आई। तो उसने कैसे सुनाई मुरली? बाबा कहते हैं नष्ट मोह बन जाओ, तुम्हें मोह नहीं होना चाहिए, और देखो अपनी बड़ी बहन जी को, हमारी बड़ी बहन जी। अब वो बैठे हैं, इतनी बड़ी सभा थी, इतने सारे स्टूडेंट्स, उसमें से पता नहीं कितने नए होंगे, कितने निश्चय बुद्धि होंगे, और कितनों ने कितना ज्ञान समझा होगा। उस सभा के बीच वो बहन बोल रही है, देखो एक नहीं 3-3 बिल्लियां पाल के रखी है। और अगला पॉइंट वो वहीं छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट, किसी की भी निंदा करना, बिहानी करना, हंसी करना, वास्तव में वो दिखाता है हमारी अपनी स्थिति को। मुझे लगता है उस सभा में जो बुजुर्ग भाई लोग थे और जो पुराने थे, उनको दया आई होगी इस बहन पर। बहनों से भी ज्यादा निश्चय बुद्धि तो वो बुजुर्ग लोग रहते हैं बहुत सारे सेंटर्स पर, हमेशा हर सेंटर पर कुछ ऐसी माताएं होती है जो बहनों की पालना करती है। जब बहनें रोती है तो वो संभालती है उनको। हर सेंटर पर ऐसी माताएं और ऐसे बुजुर्ग भाई भी होते हैं जो बहुत निश्चय बुद्धि और बहुत मैच्योर होते हैं। एक जगह हमको याद है, मुरली का टाइम था, बहन जी अंदर सो रहे। कब तक बैठे स्टूडेंट्स के? वो भाई अंदर जाके उठा के लेके आए बहन जी को। हंचप में मैच्योरिटी जो होती है ना, एक अलग चीज है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। वो हमें अपने अंदर धारण करनी। तो कितने हो गए? छह। सातवां है ये सब करना और इन सब को छिपाना। सातवां है ऊपर की जो छह बातें हैं उनको छिपाना। सब चालू है, वही अपवित्र संकल्प भी आ रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, वैसी फ्रेंडशिप भी बना रखी है, फेमिलियरिटी भी है। वही धोखा, वही झूठ, वही नॉवेल्स, वही मूवीज, सब चल रहे, परंतु चलने देना अंदर ही अंदर, छिपा के रखना। ये अपने आप में एक दाग है, छिपाना। आठवां, काम चोर। क्या बनना? काम चोर, या डिले करना हर बात, प्रोकेस्टिनेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आज नहीं कल, बहाने ढूंढना, अब नहीं बाद में। जैसे दिखाया है एक आश्रम में एक गुरु जी थे, बेचारे बूढ़े हो गए थे, और उनका जो शिष्य होता है बहुत ही निकम्मा और काम चोर निठल्ला। रात होती है तो कहते हैं शिष्य, जरा तुम दिया लगा देना। तो वो कहता है दिया वही तो है आपके बाजू में, उठ के लगा लो ना। थोड़ी देर के बाद उसको कहते हैं कि ठंडी हवाएं बहुत आ रही है बेटा, खिड़की जरा बंद कर देना। तो कहता है आपके बाजू में ही तो है, थोड़ा खड़ा होना है बस, और खिड़की बंद कर दो। फिर तीसरी बार उसको कहते हैं कि बेटा मेरी भोजन की थाली जरा ले आना। वो कहता है दो काम तो मैंने कर दिए, कम से कम तीसरा तो करो। बहाने ढूंढना, जैसे कल भी कहानी सुनाई थी ना, सुबह जल्दी क्या है, नरक में संकट आ गया था तो जो मंत्री था वो गया और उसने कहा भगवान भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, शैतान भी है, परंतु जल्दी नहीं है कुछ, आराम से होने तो जो होना है। तो डिले करना, टाल मटोल करना, या काम चोर बनना, जो सेवा दी गई है हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढना। एक होता है जो दी है वो कैसे भी करके करना। जगदीश भाई का उदाहरण है, बाबा ने पत्र दिया था लिखने के लिए कि पंत प्रधान को पत्र लिखो। उनके साथ चार साथी थे, एक बैंक का मैनेजर था, एक प्रिंसिपल था, एक यूनिवर्सिटी का कोई बड़ा हेड था, कोई कंपनी वाला कोई था, चार लोग थे। पांचों लोग ये जब कमरे में पहुंचे तो पता चला लाइन नहीं है। सबने सोचा बाबा इतना बूढ़ा हो गया, उसको थोड़ी ना याद रहता है, अभी बोल तो दिया है, कल देखेंगे, अभी तो अभी, और हम बोल भी तो सकते हैं, लिखना तो चाहते थे, परंतु लाइट ही नहीं है तो कहां से लिखेंगे। जगदीश भाई ने क्या किया, बाहर गए, उन्होंने सोच लिया मुझे करना है, किसने कहा है, पहली बार वो भी कहा है मैं नहीं करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। स्ट्रीट लाइट पे गए, रात भर लिखते रहे 3 बजे तक, और जब 3:30 बजे उठ के ऊपर आने लगे तो ये लोग अमृत वेले के लिए उठे थे और उनको देखने लगे कि ये अब तक जागा था। थोड़ा उनको भी हलचल हुई, पर उन्होंने पूरा किया। इंग्लिश में एक लेटर लिखा, हिंदी में एक लेटर लिखा, कितनी बार उसको फेयर किया, लिखकर ठीक किया। दूसरे दिन सुबह बाबा आए, मुरली चली। बाबा ने ना मुरली के पहले कुछ कहा, ना मुरली के बीच में कुछ पूछा, ना ही मुरली के बाद। मुरली भी पूरी हुई, सब अपने अपने इधर चले गए। वो चारों लोग खुश हो गए। देखा, बोला था ना ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी था। बाबा तो भूल गए होंगे, इतने बूढ़ा व्यक्ति थोड़ी ना याद रखता है ये सारी चीजें। फिर बाबा सबको पिकनिक लेके गए पहाड़ी पे। पिकनिक हुई, पिकनिक से आए और फिर पूछा किस किस ने लिखा है। जगदीश भाई ने अपने प्लेट में लिखा है कि शर्म आनी चाहिए थी उनको, शर्म मुझे आ रही थी कि भगवान बाबा पूछ रहा है, मैं कैसे बोलूं कि मैंने लिखू लिखा है। थोड़ा सा संकोच भी हो रहा था और वो बेचारे बैठे थे। भगवान का दिल जीत लिया और बाबा ने वरदान दे दिया कि इस यज्ञ के प्रमुख प्रवक्ता तुम होंगे, चीफ स्पोक्समैन ऑफ दिस यज्ञ। तो जो काम दिया गया है उसे क्या करना है, तुरंत करना है, टाल मटोल नहीं करना। ये एक संस्कार बन जाता है तो, और वो बहुत तंग करता है। कोई भी काम होते नहीं है, जो काम दिया गया तुरंत करना। नौवा, कंपैरिजन करना और ईर्ष्या, तुलना करना और ईर्ष्या करना दूसरी बहनों के साथ, तुलना करना अपनी दूसरे सेंटर के साथ, तुलना करना उनके पास वो है हमारे पास ये नहीं है, उनके पास वैसी कार है हमारे पास ये नहीं है, वो वैसी सेवा करते हम ऐसी नहीं करते, कंपेयर करते रहना व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं की तुलना, हर प्रकार से तुलना करना। ये जो ईर्ष्या का दाग है बहुत सूक्ष्म दाग है, दाग है। और अंतिम दसवां, अभिमान। किसका अभिमान? अपने शिक्षा का, एजुकेशन का, जो पढ़ाई हमने पढ़ी है लौकिक की, उसका अभिमान इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने वो पढ़ाई की है। और उन बहनों के सामने अहंकार दिखाना जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको नीचा समझना जो कम पढ़ी लिखी है, उनके सामने ये दिखाना कि हमारी ऐसी ऐसी शिक्षा है। अहंकार, वो अहंकार शिक्षा का भी हो सकता है तो कभी कभी पवित्रता का भी अहंकार होता है कि हम बहुत पवित्र हैं। कल परसों सुना रहे थे, यहाँ नहीं व्यक्तिगत चर्चा में सुना रहे थे कि एक सन्यासिनी, जैन सन्यासिनी, उसको इतना अहंकार था, इतना अहंकार था अपनी पवित्रता का कि सोचती थी कि मैं ही सबसे बड़ी हूं। और ये जब गृहस्थी, घृणा उनके प्रति, एकदम भिखारी लोग हैं ये, उनके तरफ देखना भी नहीं है, उनकी परछाई भी मुझे पड़नी नहीं चाहिए, उनसे मुझे बात भी नहीं करना है, वो भी मुझसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो भिखारी है और मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं परम पवित्र हूं, ऐसी वो सन्यासिनी थी। परंतु उसके इस पवित्र तो वो थी, परंतु उस पवित्रता के साथ एक अहम जुड़ा हुआ था, एक अहंकार जुड़ा हुआ था। और इतना भयंकर वो अहंकार था, पवित्रता का अहंकार, ये हम अधिक पवित्र है, दूसरे कम पवित्र है। और उसके मन में एक बार इच्छा उत्पन्न होती है कि मेरे पूर्व जन्म में मैं क्या थी। वो अपने गुरु से कहती है कि मुझे बताओ, वो विधि, वो टेक्निक सिखाओ कि जिससे मुझे ये पता चले कि मैं कौन थी और मैंने क्या क्या कर्म किए थे। गुरु उसको समझाते क्यों करना है तुम्हें, क्यों जानना है, ये जानकर क्या फायदा। जैन धर्म में कॉन्सेप्ट है जाति स्मरण, जाति स्मरण में पूर्व जन्म की स्मृति आती है। उनके पास विधि है कि जिससे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं पूर्व जन्म में हम क्या थे। तो वो कहती है मुझे जाति स्मरण सिखाओ, मुझे करना है। वो गुरु उसको बहुत समझाते, वो मानती नहीं, वो कहती है मुझे जानना है। एक दिन उसको सिखा दिए और वो साधना करना आरंभ करती है। साधना करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है लंबे समय तक। वो बार बार कहती रहती है कि मुझे कुछ भी अभी तक तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ना ही समझ में आया है, क्या करूं। गुरु कहते साधना चालू रखो। होगा एक दिन अचानक आधी रात 12 बजे उसकी आंख खुलती है, एकदम घबराई हुई सी, पसीना पसीना, और भागती है अपने गुरु के पास और कहती है मुझे बचाओ। वो कहता है क्यों? वो कहता है, वो कहती है मुझे वो दिख गया मैं कौन थी पिछले जन्म में, और वो मैं भूल नहीं पा रही हूं, क्या करूं आप मुझे ये बताओ कि मैं भूल जाऊं। क्योंकि पूर्व जन्म का वो जो द्वार है, अगर हम यहां है पीछे 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 हिप्नोटिक रिग्रेशन करते करते, ये हमारा युवा काल, बचपन, माँ के गर्भ में, पेट में, ये यहाँ एक द्वार है, और इसके पहले यहाँ पूर्व पहले का जन्म। ये जो द्वार है, ये द्वार खुलता नहीं, टूटता है, और स्मृतियां की बाढ़ आ जाती है। वो कहती है मैंने देखा कि पूर्व जन्म में मैं एक वेश्या थी, अब मैं क्या करूं, मुझे वो सब याद आ रहा है, मुझे बचाओ। गुरु कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो द्वार है ये खुलता नहीं है, टूटता है, सारी स्मृतियां लौट कर आती है। अब कैसे वो मुक्त होगी और कैसे उसका जीवन होगा आगे का? कहां गया उसका वो अहंकार? अगर वो कहे भी, दुनिया वाले माने भी, तो भी उसकी अपनी आत्मा उन स्मृतियों से कैसे मुक्त हो, उसे वो सब याद आ रहा है, एक एक दिन याद आ रहा है और एक एक रात याद आ रही है। इसके लिए बाबा ने एक शब्द में कह दिया, तुम्हारे सिर पर जन जन के पाप का बोझ है। कौन सा बोझ है वो मत पूछना, अगर बता दू तो ब्राह्मण जीवन की मौज खत्म हो जाएगी। एक शब्द में बाबा ने कह दिया तुम्हारे सिर पर जन जन का पाप है, स्वीकार कर लो इसको, विकर्मों का बोझ है और हमें उसे दफ्त करना है। वो कौन से हमने पाप किए अगर ये पूछा जाए और उसने बता दिया और हमारी बुद्धि में वो आ गए, तो ये जीवन, ये पवित्रता कुछ भी हम नहीं कर सकते। वो तो अच्छा ही है, प्रकृति का यह नियम है कि स्मृतियों को पीछे ही हम छोड़ देते हैं, दूसरे शरीर से जैसे ही निकलते पहले शरीर से। तो टोटल कितनी बातें हुई? 10। कौन रिवाइज करेगा? कुमारियों में से खड़े रहकर कोई एक बहन रिवाइज करे 10 बातें। केवल नंबर, ये नंबर पर ही बिना देखे करो, सब आपको मदद करेंगे। जो बोलना ये छूट जाते हैं एडिशन कर सकते हो। क्लास पूरी हो रही है, आ जाइए माइक पे, बोलिए, आ जाइए इधर।
स्पिरिचुअल अटैचमेंट, फैमिलियरिटी, झूठ झूठ बोलना, छिपाना और अभिमान, पहला था अपवित्र संकल्प, दूसरा झूठ, तीसरा फैमिलैरिटी, चौथा बुक नॉवेल्स या छिपा मतलब छुप छुप के कुछ मूवीज वगैरह देखना, झूठ बोलना, धोखा देना, निंदा करना, ये सब छिपाता, अभिमान, कांसरी वही डिले करना, कांसर मार, कंपैरिजन एंड इच्छा करना, अम्शन
पॉइंट आई कहाँ से थी? किसी किताब में लिखी है? कहाँ से आती है पॉइंट? पॉइंट निकलती है चिंतन से। ऐसे कहीं 10 पॉइंट लिखी नहीं है कि एक ही नंबर पर है, दो ही नंबर पर है, तीन नंबर पर है, चार नंबर पर है। परंतु जब किसी टॉपिक को पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया जाए और उसको उस रीति से याद रखी जाए तो लंबे समय तक वो याद रहे। अभी इसके बाद हमें नहीं लगता है कि इस जीवन में यदि बेदाग शब्द आया कभी तो जैसे ही शब्द आएगा उसके साथ ये 10 पॉइंट जुड़ जाएगी कि हमें अपना जीवन बेदाग बनाना है, बेदाग फिरे समान। चलो ये क्रम याद नहीं आएगा परंतु जुड़ी हुई बातें तो याद आती है थोड़ी बहुत। वैसे हम कितनी क्लासेस सुनते हैं परंतु यदि वो रैंडम हो तो कुछ याद नहीं रहता है। अच्छा सब लगता है परंतु याद नहीं रहता है, हाथ में कुछ नहीं आता। इसके लिए हम जब चिंतन करें किसी भी विषय के ऊपर पॉइंट्स निकाल लें, पॉइंट्स बना दें और फिर दूसरों को क्लास में सुनाएं, क्योंकि आप सभी टीचर्स बनने वाली हैं और कुछ टीचर्स तो यहाँ हैं ही, तो स्टूडेंट्स को जब हम मुरली तक सुनाते हो, उनको कोई बात सिखाते हो, तो वो मूर्ति हमारी अच्छे से पहली पड़ी हुई हो, हमने बहुत गहरा और चिंतन किया हो उसके ऊपर, उसके बाद ही हम दूसरों को सिखाएं। और क्लास में हो सके तो होमवर्क दे सकते हैं आप एक एक टॉपिक पर अपने स्टूडेंट्स को, उनको कह सकते हैं कि ये मूर्ति से इतनी टॉपिक्स है। किसी को आप कह सकते हैं कि ड्रामा के विषय में 10 पॉइंट्स लिख के लाओ नाम सहित, तो वो करेगा। अगर कहा सब लिख के लाओ तो कोई करेगा कोई नहीं करेगा। नाम सहित होमवर्क अगर देंगे कि हाँ आप ड्रामा पर 10 पॉइंट्स कर लिख के लाए, जरूरी नहीं है कि वो सुनाए या पढ़े, लिख के अपने पास रखे आपको बाद में दिखा दे, तो उनकी बुद्धि क्या करेगी, चलेगी फिर, वो भी थोड़ा ज्ञान का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो इस तरह से कोई भी विषय लेकर उस पर चिंतन करना, इसमें बुद्धि को चलाना, इससे हमारा बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा व्यर्थ से मुक्ति स्वतः ही, और मन में समर्थ संकल्प, वो तो दूसरी बात है, ये जो बातें कही उसकी धारणा हो जाना वो तो होगी ही, वो तो स्वतः ही होने लगेगी, वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी धारणा की। तो ऐसे हमें अपना जीवन बेदाग बनाना है। अभी बहनों का क्लास थोड़ा लेट चालू करते हैं। शांति
मैं जो है एक टीचर से मिलती हूँ। बन में गूंज रही है खुशियों की दलहन।
आनंद मिला इलाही कैसे इजहार करें।